महाबंद पुस्तक पांचवी लेक्चर नंबर 16 ओ नमः सिद्धेभ्य ओ नमः सिद्धेभ्य ओ नमः सिद्धेभ्य ओ शुद्धात्मने नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूं भूतबले प्रणीतं तं बन्धतत्त्वप्रकाशकम् महाधवल विख्यातम् महाबंधम नमामि। यह श्री भगवान भूतबली भट्टारक प्रणीत महाबंध नाम का सिद्धांत शास्त्र है, जिसका दूसरा नाम है महाधवल। उसमें पांचवी पुस्तक में तीसरा अनुभाग बंध अधिकार चल रहा है और अभी हम आए हैं पृष्ठ संख्या 48 पर 48। बंध सन्निकर्ष की प्ररूपणा में जघन्य अनुभाग बंध का सन्निकर्ष हम देख रहे हैं और वो भी मार्गणाओं की बात चल रही है। हाँ बहुत अच्छा। पंचेन्द्रिय तिर्यंश और पर्याप्त में ये बातें हो रही है। अब अन्य अन्य प्रकृतियों का सन्निकर्ष हमने देखा है। अब 48 पृष्ठ पर हम पढ़ेंगे। बादर प्रकृति के जघन्य अनुभाग का बंध करने वाला जीव दो गति, क्योंकि दो ही गति बांधता है ये मनुष्य तिर्यंश, पांच जाति क्योंकि बादर तो सभी के होते हैं, छह संस्थान छह सहनन दो अनुपूर्वी दो विहाय गति त्रस स्थावर पर्याप्त अपर्याप्त प्रत्येक और साधारण। बादर और सूक्ष्म के तो बादर लिया है इसलिए सूक्ष्म के लेने की कोई बात नहीं है, इसलिए तीन लिए, त्रस आदि में से तीन युगल लिए और स्थिर आदि छह युगल का कदाचित बंद करता है और यदि बंद करता है तो जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। ये सभी प्रकृतियां कैसी हैं तो मध्यम परिणाम में जघन्य बनती है बादर की भी। संकलश होगा तो सूक्ष्म बंधेगी, सॉरी बादर और सूक्ष्म बंधेगी, इसलिए मध्यम परिणाम में ये जघन्य है। तो जघन्य होगा या अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है वो छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। औदारिक शरीर तेजस शरीर अब ये सब नियम से बंधने वाली है। कार्मण शरीर प्रशस्त वर्ण चतुष्क अप्रशस्त वर्ण चतुष्क अगुरु लघु उपघात और निर्माण का नियम से बंद करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है। क्योंकि इसमें से ये जो कुछ प्रशस्त प्रकृतियां हैं उनका जघन्य तो तीव्र संकलेश में होगा और यह मध्यम परिणाम है और इसमें से जो अप्रशस्त वर्ण चतुष्क और उपघात है जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं विशुद्धि में उसका जघन्य होगा यह मध्यम परिणाम में वो भी अनंत गुणा है। औदारिक अंगोपांग औदारिक शरीर को तो नियम से मिल लिया, औदारिक अंगोपांग को कदाचित में रखेंगे क्योंकि एकेंद्री के साथ नहीं बनता है, द्विंद्रिय आदि के साथ बनता है। परघात उच्छ्वास क्योंकि पर्याप्त या अपर्याप्त का ऑप्शन है इसलिए पर्याप्त बंधेगा तो ही परघात उच्छ्वास बंधेंगे। आतप और उद्योत का कदाचित बंध करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है। ये सभी प्रशस्त प्रकृतियां हैं और यह मध्यम परिणाम है। इसी प्रकार पर्याप्त और प्रत्येक की मुख्यता से भी सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यह प्रतिपक्ष प्रकृतियों का बंध नहीं करता। जैसे बादर के साथ यह हमने सूक्ष्म का नाम नहीं लिया है, वैसे अगर हम सन्निकर्ष प्रत्येक पर्याप्त पर लगाना चाहते हैं तो अपर्याप्त की बात ही नहीं करेंगे। उसमें ऑप्शन क्या होगा, त्रस या स्थावर होगा, प्रत्येक या साधारण होगा, बादर या सूक्ष्म होगा, पर्याप्त के साथ। ऐसे जब प्रत्येक के साथ लगाना है, प्रत्येक के मुख्यता से, तो कहेंगे त्रस या स्थावर होगा, पर्याप्त या अपर्याप्त होगा, और सूक्ष्म या बादर होगा। प्रत्येक की मुख्यता से तब साधारण की बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं बंधेगा, होगा ना?
प्रत्येक का
अग्नि का एक, वायु का एक, प्रत्येक जो है सारे सूक्ष्म में भी। हाँ, दोनों बन सकते हैं, सभी ऑप्शन लिए ना अभी हमने। इतनी विशेष है कि प्रतिपक्ष का बंध नहीं है, परंतु जब प्रत्येक नाम कर्म बांध रहा है तो या तो बादर बांधेगा या सूक्ष्म बांधेगा।
साधन नहीं बांधेगा।
प्रत्येक के साथ साधारण कैसे
होगा?
प्रत्येक और साधारण का युगल है, आइदर कोई बंधेगा। जब प्रत्येक बांध रहे तो साधारण का सवाल ही नहीं है, उनका प्रश्न अलग है। ये तो बादर या सूक्ष्म बांध सकता है क्या? नहीं, ऑप्शन दोनों ही है। ये सारे जो है त्रस या स्थावर के चार चार, इनका जघन्य मध्यम परिणाम ही होगा। ये सब दस युगल का मध्यम जो है, ये सारी जघन्य जो है वो मध्यम परिणाम ही होता है, इससे सभी बन सकते हैं। हाँ, ये लिखा ना, देखो जैसे बादर के साथ प्रत्येक और साधारण लिया, वैसे पर्याप्त के साथ भी प्रत्येक और साधारण का भंग होगा। सभी लगाना, प्रत्येक लगाना है तो बादर या सूक्ष्म भी होगा, प्रत्येक या साधारण भी होगा। नहीं, पर्याप्त तो लिया है हमने, अपर्याप्त का नहीं होगा उसके साथ। ये दूसरा पैराग्राफ 48 पेज पर, सूक्ष्म के जघन्य अनुभाग का बंध करने वाला जीव, ऊपर बादर का लिया, अब सूक्ष्म का जघन्य अनुभाग बंध करने वाला जीव। अभी सूक्ष्म किसमें होता है? एक इंद्रिय में, कि द्विंद्रिय के, तीनद्रिय के, चतुरिंद्रिय के, पंचेंद्रिय में? मात्र एक इंद्रिय में। तो गति कौन सी बंधेगी? तिर्यंच गति। बादर के साथ तो दोनों गति और पांचों जाति बन सकती थी, सूक्ष्म के साथ तो मात्र तिर्यंच गति और एक इंद्रिय जाति बंधेगी। फिर हुंडक संस्थान, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, स्थावर, दुर्भग, अनादे और अयशस कीर्ति का, क्योंकि यह यशस कीर्ति का भी ऑप्शन नहीं होगा। जैसे बादर में तो हो सकता, यहाँ नहीं होता। बादर के साथ तो छह युगल हो सकते थे, तो यहाँ सूक्ष्म के साथ हमने देखा इनका नियम से बंध करता है, ये सारी नियम वाले लिए। किंतु वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है, और ये भी सारी कैसी है तो मध्यम परिणाम में जघन्य बनती है। तो जघन्य भी और अजघन्य भी, यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है, वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है, औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, अगुरु लघु, उपघात और निर्माण का नियम से बंद करता है, क्योंकि ये तो द्रोहबंदी प्रकृतियां हैं। जो अजगन्य अनंत गुण अधिक होता है, क्योंकि सूक्ष्म का जघन्य मध्यम परिणाम में है, और इन प्रकृतियों का जघन्य जो है, इनमें से जो कुछ प्रशस्त प्रकृतियां हैं उनका जघन्य संक्लेश में होगा, और जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं, उपघात और अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, वो विशुद्धि में जघन्य होगा। मध्यम परिणाम में दोनों का ही अनंत गुणा अधिक होगा। ख्याल में आती ना ये बात? पर्याप्त अपर्याप्त, देखो सूक्ष्म के साथ प्रत्येक या साधारण, आपका यही प्रश्न था ना, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ का कदाचित बंद करता है। इसमें स्थिर आदि युगल में से मात्र दो ही ऑप्शन है, स्थिर या अस्थिर, शुभ या अशुभ। यदि बंद करता है तो जघन्य अनुभाग का भी करता है, क्योंकि वे भी मध्यम परिणाम में जघन्य बनते हैं। और अजगण्य अनुभाव का भी बंद करता है। यदि अजगण्य अनुभाव का बंद करता है वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। इसी प्रकार साधारण की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, क्योंकि साधारण भी वो एक इंद्रिय जाति है और उसके साथ ही होगा तिर्यंश गति के साथ, क्योंकि एक इंद्रिय में वो भी वनस्पति कायिकों में तो साधारण वाला भेद है, अन्यत्र कहीं तो है ही नहीं है, इसलिए उसमें भी ये बातें घटित हो गई। तो ये मादर और सूक्ष्म की बात हो गई। अभी अपर्याप्त के जघन्य अनुभाव का बंद करने वाला जीव वहां बादर के समान पर्याप्त और प्रच्छोस्थान पतित वृद्धि रूप होता है। इसी प्रकार साधारण की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, क्योंकि साधारण भी वो एक इंद्रिय जाति है और उसके साथ ही होगा तिर्यंश गति के साथ, क्योंकि एक इंद्रिय में वो भी वनस्पति कायिकों में तो साधारण वाला भेद है, अन्यत्र कहीं तो है ही नहीं, इसलिए उसमें भी ये बातें घटित हो गई। तो ये मादर और सूक्ष्म की बात हो गई। अभी अपर्याप्त के जघन्य अनुभाव का बंद करने वाला जीव वहां बादर के समान पर्याप्त और प्रत्येक का होता है ऐसा बता दिया था, इसलिए यहां अपर्याप्त को ले लिया। सूक्ष्म की बात बता दी, साधारण का उसी के समान है बता दिया, अब अपर्याप्त। परंतु अपर्याप्त तो सभी जीव समासों में हो सकता है ना, अपर्याप्त पांचों जाति बन सकती है, दो गति बन सकती है। तो अपर्याप्त के जघन्य अनुभाव का बंद करने वाला जीव, अपर्याप्त का जघन्य भी मध्यम परिणाम ही होता है, दो गति पांच जाति असंप्राप्त सुरपाटिका सहनन दो अनु, क्योंकि अपर्याप्त है ना, इसलिए दो अनुपूर्वी ये कदाचित में ले लेंगे सबको। त्रस्य स्थावर बादर सूक्ष्म प्रत्येक साधारण का कदाचित बंद करता है, अपर्याप्त लिया है इसलिए पर्याप्त का सवाल नहीं है। यदि बंद करता है तो जघन्य अनुभाव का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाव का भी बंद करता है, और यदि अजघन्य अनुभाव का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। एक असंप्राप्त सुपाटिका भी इसलिए ऑप्शनल रखा, एक इंद्रिय के साथ नहीं बंधेगी वो। औदारिक शरीर तेजस शरीर कार्मण शरीर प्रशस्त वर्ण चतुष्क अप्रशस्त वर्ण चतुष्क अगुण लघु उपघात और निर्माण का नियम से बंद करता है, ये ध्रुवबंदी है जो अनंत गुणा अधिक होता है, क्योंकि प्रशस्त प्रकृतियां संकलेश में बंधेगी जघन्य और प्रशस्त विशुद्धि में बंधेगी, मध्यम में दोनों का ही अनंत गुणा अधिक होगा। कुंडक संस्थान और अस्थिर आदि पांच का नियम से बंद करता है। नितिन भाई किसको छोड़ा है? क्योंकि अपर्याप्तों के स्वर नाम कर्म का उदय नहीं, भले वो पंचेंद्रीय जाति बांधे द्विंद्रीय बांधे, स्वर का तो दुस्वर का बंध होगा, हाँ अपर्याप्तों में नहीं होगा, उसके साथ बंध नहीं होगा। तो कहते इनका नियम से बंद करता है, इनको ऑप्शनल में नहीं रखा, स्थिर या अस्थिर ऐसा कोई नहीं कह, सारे अस्थिर आदि अशुभ ही प्रकृतियां बनती है। किंतु वह जघन्य अनुभाव का भी बंद करता है, क्योंकि ये भी मध्यम परिणाम से जघन्य बनती है, और अजघन्य अनुभाव का भी बंद करता है। यदि अजघन्य अनुभाव का बंद करता है तो छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। औदारिक अंगोपांग का कदाचित बंद करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है, औदारिक शरीर को तो नियम रूप से लिया, अंगोपांग को तो द्विंद्रिय आदि के साथ उसका बंद होगा। ये अस्थिर आदि पांच में लिया ना उसको, और यशस कीर्ति ही बंधेगी, दोनों कहाँ से निकाला आपने? हाँ हाँ नहीं नहीं पैर कोई बनता ही नहीं, हाँ
सभी अस्थिर,
हाँ सारी अशुभ, यानी अस्थिर अशुभ दुर्भोग दुष्वर नहीं लेना, अनादेय और अयशस्वी। स्थिर प्रकृति के। अभी त्रसादी चार युगल तो हो गए, अभी स्थिर की बात है। ये भी सारे मध्यम परिणामों में जघन्य बनते हैं। स्थिर प्रकृति के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव दो गति, पांच जाति, छह संस्थान, छह सहनन, दो अनुपूर्वी, दो विहाय गति, त्रस स्थावर, बादर सूक्ष्म, प्रत्येक साधारण और शुभ आदि पांच युगल का कदाचित बंद करता है। कदाचित युगल लिए पांच युगल क्यों लिए, किसको छोड़ा? सिरा अरे सर क्या सिरा सिर का सिर के साथ हम ले रहे हैं तो स्थिरादि छह में से एक को बता रहे तो बाकी पांच रह गए। स्थिर अस्थिर को छोड़कर बाकी युगल तो उसमें से कोई भी बन सकती है, यानी स्थिर के साथ अशुभ भी बन सकती है, ये लेना। यदि बंद करता है वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कामन शरीर, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, अगुरु लघु चतुष्क, चतुष्क लिया। हमेशा हम क्या देखते थे? अगुरु लघु रूपघात को लेते थे, परंतु यहाँ स्थिर है, अपर्याप्त के साथ तो नहीं बंधेगी। वो तो आगे बताएंगे, पर चतुष क्यों लिया? क्योंकि उपघात और सॉरी परघात और उच्छ्वास नियम से बंधेगी। अभी देखो हमने ऊपर अपर्याप्त का भंग देखा था, अपर्याप्त के साथ सारे अस्थिर आदि पांच लिए थे जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं। इसका अर्थ स्थिर जो प्रकृति है वो अपर्याप्त के साथ नहीं बंधेगी, यानी पर्याप्त के साथ ही बंधेगी। इसका अर्थ क्या है? उपघात सॉरी परघात और उच्छ्वास तो बंधेगी बंधेगी, इसलिए चतुष्क लिया जो नियम से बंधने वाले और निर्माण का नियम से बंद करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है। ये हमने देखा ना, इसमें से कुछ प्रशस्त है कुछ अप्रशस्त है, मध्यम परिणामों में दोनों ओर से वो अनंत गुणा हो जाती है। औदारिक अंगोपांग अभी इसको ऑप्शनल में रखेंगे क्योंकि एकेंद्री के साथ नहीं बनता है, स्थिर तो एकेंद्री के साथ भी बन सकती है। औदारिक अंगोपांग आतप और उद्योत का कदाचित बंद करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है, क्योंकि ये भी सारी प्रशस्त प्रकृति है। पर्याप्त का नियम से बंद, देखो ये बात आई ना, पर्याप्त का नियम से बंद करता है किंतु वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है, क्योंकि उसी का भी जघन्य मध्यम परिणाम में होता है। यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। इसी प्रकार शुभ और यशस कीर्ति की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। स्थिर के समान यशस कीर्ति होती है, इतनी विशेषता है कि यशस कीर्ति का सूक्ष्म और साधारण को छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए। हमने जैसे देखा था स्थिर जो है अपर्याप्त के साथ नहीं बंधेगी, पर्याप्त के साथ बंधेगी, परंतु स्थिर के साथ सूक्ष्म भी बन सकता है, बादल भी बन सकता है, प्रत्येक भी बन सकता है, साधारण भी बन सकता है, उसमें कोई ना नहीं, केवल अपर्याप्त नहीं बंधेगा। परंतु यशस कीर्ति तो हाँ, ना अपर्याप्त में बंधेगी, न सूक्ष्म में बंधेगी, न साधारण में बंधेगी। मैंने यहाँ सूक्ष्म और साधारण की बात की और ऊपर हमने ऑलरेडी अपर्याप्त को छोड़ा था, ख्याल में नहीं? इसमें विशेषता क्या है तो ये दो और छोड़ने उसमें से, यानी यशस्वी कीर्ति के साथ टोटल तीन नहीं बंधेगी, अपर्याप्त नहीं बंधेगी, सूक्ष्म नहीं बंधेगी और साधारण नहीं बंधेगी। इसी प्रकार अब तक तो सारा तिर्यंच अपर्याप्त की बात चल रही थी, अर्थात तिर्यंच अपर्याप्तकों के समान ये हमने पंचेन्द्र तिर्यंच अपर्याप्त देख रहे थे, सब अपर्याप्तक, सब विकलेन्द्रिय, पृथ्वी कायिक यानी अभी काय मार्गणा की अपेक्षा पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वनस्पति कायिक, प्रत्येक शरीर यानी वनस्पति कायिक प्रत्येक शरीर, ये पूरा एक शब्द यानी वनस्पतियों में प्रत्येक वनस्पति ऐसा लेना, वनस्पति कायिक यानी जनरल और निगोद जीवों के जानना चाहिए, तेजस कायिक और वायु कायिक जीवों के भी यही सन्निकर्ष है, वो तो मात्र तिर्यंच गति बांधेंगे और उनके लिए तिर्यंच गति मध्यम परिणामों में जगन्य नहीं बंधेगी, जगन्य सर्वविशुद्ध परिणामों में बंधेगी। इतनी विशेषता है इनमें तिर्यंच गति तिर्यंच गत्यानुपूर्वी और नीच गोत्रों को ध्रुव करना चाहिए यानी उनमें उनके लिए वो ध्रुव बंदी है, तथा मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी और उच्च गोत्रों को छोड़कर सन्निकर्ष कहना चाहिए। इतनी और विशेषता है कि अप्रशस्त वर्ण चतुष्क और उपघात का नियम से बंद करता है किंतु वह जगन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजगन्य अनुभाग का भी बंद करता है। अश्विन भाई ऐसा क्यों कहा, इनका जगन्य बंद तो सब करते हैं तो इनमें क्या विशेषता हुई? देखिए क्या कहना चाहते हैं, वो प्रशस्त वर्ण चतुष्क सबके बनती है, जगन्य कब बंधेगी? अति विशुद्धि में, सर्व विशुद्धि में जगन्य बंधेगी, परंतु अन्य में अन्य जीवों में तेजस का एक वायु का एक को छोड़ दो, अन्य जीवों में तिर्यंच गति तो मध्यम परिणामों में जगन्य बंधेगी, जो जो मनुष्य गति बांध रहे हैं उनका जगन्य जो है वो मध्यम परिणामों में दोनों गतियों का जगन्य होता है। तेजस कायिक और वायु कायिक में क्या विशेषता है? सर्व विशुद्ध अवस्था में भी तिर्यंच गति बांध रहा है और वहां उसका जगन्य होगा, इसलिए कहते हैं उपघात और अप्रशस्त वर्ण चतुष्क का जगन्य तिर्यंच गति के जगन्य के साथ हो सकता है, यानी जहां सर्व विशुद्ध है वहां हो सकता है, ये बात वहां बताना चाहते हैं। तो फिर वो लगा लेना, यदि अजगन्य अनुभाग का बंद करता है तो वो छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है, सब एकेंद्रियों के भी यही सन्निकर्ष है। इतनी विशेषता है कि इनमें तिर्यंच गति त्रिक का भंग अग्निकायिक जीवों के समान है। त्रिक में किसको लिया? नीच गोत्र। तिर्यंच गति गत्यानुपूर्वी और नीच गोत्र, यानी जब हम एकेंद्रिय कहेंगे, एकेंद्रिय कहने से जिस किसी को जगन्य होता है उसकी बात करेंगे। जब हमने इंद्रिय मार्गणा में एकेंद्रिय जीवों में सबसे जगन्य कहाँ होता है तिर्यंच गति का बंधन, तो कहेंगे अग्नि कायिकों में होगा सर्व विशुद्ध अवस्था। यदि हम कायिकों की बात करेंगे तो अन्य पृथ्वी कायिक जल कायिक में वो जगन्य वो मध्यम परिणाम में होगा। ख्याल में ना क्या हमारी मार्गणा कौन सी उसको सोचना। तथा अप्रशस्त वर्ण के जगन्य अनुभाग का बंध करने वाला जीव तिर्यंच गति और तिर्यंच गत्यानुपूर्वी का कदाचित बंद करता है। देखो यहाँ क्या कहना चाहते, अप्रशस्त वर्ण इसमें उपघात को क्यों छोड़ा उससे, ठीक है उसकी चर्चा बाद में करेंगे। उपघात तो हर समय बंधेगा नियम, प्रशस्त वर्ण के साथ उपघात को भी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, मेरा प्रश्न हमें भी इसको देखेंगे। देखो अप्रशस्त हमारे मार्गणा कौन से भी एक ही नहीं होते, अप्रशस्त वर्ण का जगन्य कहाँ होता है? सर्व विशुद्ध में होता है। तो एक इंद्रियों में सर्व विशुद्ध कौन है? सभी हो सकते हैं। अग्नि का एक भी सर्व विशुद्ध हो गए, तीरंज गति का जगह नहीं करेगा। अन्य पृथ्वी का एक, जल का एक, वनस्पति का एक सर्व विशुद्ध अवस्था में मनुष्य गति बांधेंगे। हलमे बात ये, उसकी चर्चा बाद में करेंगे, पहले ये तो समझो। वो प्रशस्त वर्ण हमने लिया, उसका जघन्य अनुभव कहाँ है? एक इंद्रियों में तो सर्व विशुद्ध अवस्था। जब हमने कायकों की अपेक्षा की थी और अग्नि का एक, वायु का एक कहा था, तो उसका सर्व जगन यानी सर्व विशुद्ध जीव के तीरंज गति के साथ वो बनता था। जब हम एक इंद्रिय जनरल बात करेंगे तो इतनी विशुद्धि सभी जीवों को होती है अपने अपने पर्याय में। तो अग्नि का एक और वायु का एक तो तीरंज गति का बन करता, पृथ्वी का एक, जल का एक, वनस्पति का एक तो मनुष्य गति का बन करेंगे सर्व विशुद्ध अवस्था में। इसलिए कहते हैं कि उसका गगन में बंद करने वाला जीव यानी सर्व विशुद्ध लिया, वो क्या कर रहा है? तीरंज गति और तीरंज गत्यानुपूर्वी का कदाचित बंद करता है, और यदि बंद करता है तो जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। ये किसकी अपेक्षा लगा? एक इंद्रियों में अग्नि का एक की अपेक्षा, अग्निवायु की अपेक्षा। इसलिए वो कदाचित लिया। जब हम वायु कायकों की और अग्नि कायकों की मार्गणा देख रहे थे तो नियम से कहे थे, और यहां कदाचित में रखा क्योंकि अन्य एक इंद्रिय इसका बंद नहीं कर रहे हैं। और यदि अजगन्य का करता है तो छह स्थान पतित वृद्धि होती है। अब मनुष्य गति को लिया, मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूरी और उद्योत का कदाचित बंद करता है जो अनंत गुण अधिक। अब ये जो तीरंज गति जो बांधेगा वो कदाचित उद्योत बांधेगा, परंतु उसका तो प्रशस्त प्रकृति अनंत गुण अधिक बांधेगा, उसका जगन्य तो यथायोग्य संतोष में होगा। ख्याल में आई बात? सर्व विशुद्ध एक इंद्रिय मनुष्य गति का तो उत्कृष्ट बंद करेगा, जिसको हम अजगण्य कहेंगे, अनंत गुण अधिक कहेंगे। यानी ये मनुष्य गति बांधने वाला कौन है? अन्य कायिक वाले, यानी पृथ्वी, जल और वनस्पति वाले। पंचेंद्रिय जाति आदि ध्रुव प्रकृतियों का नियम से बंद करता है जो अनंत गुण अधिक होता है। देखो यहाँ क्या कहना कह रहे हैं, इसको ध्रुव प्रकृति सर्व विशुद्ध वाला है, वो प्रशस्त वर्ण का जघन्य बंद करने वाला जीव लिया है। तो यहाँ तीरंज गति कोई बांधता है, कोई मनुष्य गति बांधता है, परंतु वो पंचेंद्रिय जाति ही बांधेगा। इस सर्व विशुद्ध अवस्था में एक इंद्रियादि जाति नहीं बांधेगा, इसलिए पंचेंद्रिय जाति को लिया। आदि ध्रुव प्रकृतियों में वो फिर वो औदारिक शरीर ले, औदारिक अंगोपांग, तेजस, कारमान, वो सब ले लेना इसमें, जो अनंत गुण अधिक होता है, क्योंकि ये प्रशस्त प्रकृतियां यहाँ पर अनंत गुण अधिक बंधेगी। अप्रशस्त गंध आदि तीन और उपघात का नियम से बंद करता है। देखो यहाँ किसको? अप्रशस्त वर्ण को लिया था अकेला, हेलमे ना, वहां उपघात क्यों नहीं लिया? उसके साथ उसका सन्निकर्ष बताने के लिए, यही उसके साथ भी घटित होगा। यहाँ तो अकेले वर्ण को अलग लिया, उसके साथ गंध, रस, स्पर्श भी जघन्य भी बन सकते हैं, और उपघात भी जघन्य या अजघन्य बन सकता है, किंतु वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद, क्योंकि ये ध्रुवबंदी है ना, वहां अकेले वर्णादि नहीं लिखा था, अकेला वर्ण लिया था, इसलिए अन्य तीन और उपघात यहाँ नियम से बन रहे हैं और सर्व विशुद्ध है, इसलिए इनका भी जघन्य हो सकता है। और यदि अजगन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। ये बात ख्याल में आई? अभी तक तो हम तीरंजों की मार्गणा देख रहे हैं। पहले हमने सामान्य तीरंज देखे, फिर पंचेंद्र तीरंज त्रिक देखे, फिर अपर्याप्त देखे। हाँ, इसी प्रकार इसका प्रट्रांसलेशन रह गया, અપસત ગંધ તીન ઉપગાત નિયમા ના તંતુ તંતુ ઇતના હી લિયા યહાં એસા લિખના હૈ ઇસી પ્રકાર દેખો અન્યત્ર જૈસે લિખા હૈ એવમ સાધારણ લિખા થા ના ઉસમેં સૂક્ષ્મ કે સાથ સ્થિર કે સાથ એવમ શુભ જસ લિખા થા વૈસે યહાં લિખના થા એવમ અપસત તીન ઉપગાત के लिए ऐसे हम कहेंगे इसी प्रकार अप्रशस्त तीन और उपघात के मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। वहां नहीं, सबसे लास्ट जगन्य अजगन्य होता है ना, श्वसान पत्ति वृद्धि रूप होता है, 105 पैराग्राफ के लास्ट में सब होने के बाद इसी प्रकार प्राकृत में सेकंड लाइन के बाद तंतु के आगे, तंतु के आगे एवं अपसत्त तीन उप अपसत्त तीन और उप बिंदी एवं मुझे उनके बारे में भी ऐसा ही सन्निकर्ष लगाना। अब हिंदी में ऐसा लिखना इसी प्रकार अप्रशस्त गंध आदि तीन और उपघात के मुख्यता से उपघात की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। ये हो गया अपनी तिर्यंच संबंधी मार्गदर्शन। आगे बढ़े, अब मनुष्यत्रिक में क्या विशेषता है, जो श्रेणी में जो जघन्य होती है ना, तो उसके साथ बंधने वाली वहां सूचने पड़ेगी। तो क्या कहेंगे ज्ञानावरण के बारे में?
ज्ञानावरण का जघन्य बनता है, कभी बाकी का सब ज्ञानावरण
जघन्य है। जघन्य का केवल जघन्य जघन्य ही बनेगा।
दर्शनावरण का भी जघन्य
है। हाँ, दर्शनावरण कितने लेना?
चार, एक के साथ तीन,
तीन बंधेगी, वो जघन्य ही बंधेगा, है ना। और निद्रा प्रचला के जगन्य के साथ और बाकी चार का अनंत गुणादि और स्थान बुद्धि
वगैरह,
हाँ वो वहां नहीं बनते। देखो मनुष्य त्रिक में क्षपक प्रकृतियां, आहारक द्विक और तीर्थंकर प्रकृति का भंग ओघ के समान है, तथा शेष प्रकृतियों का भंग पंचेंद्रिय तीर्यंचों के समान है। हम देख लेंगे इसको। क्षपक प्रकृतियों में हमने ज्ञानावरण देखा, दर्शनावरण देखा, अंतराय भी ऐसा ही होगा। मुनि के बारे में क्या होगा? जहाँ लोभ का जगन्य है वहाँ क्या क्या बंधेगा? कुछ नहीं बंधेगा, नहीं बंद है, बंद है, जगन्य बंद है उसके साथ, सन्निकर्ष नहीं है, कोई अन्य नहीं बंधेगा। जहाँ मान का जगन्य, माया का जगन्य है, लोभ अनंत गुणा है ना, जहाँ मान का जगन्य है माया और लोभ अनंत इस तरह से देखो। देखो निकालो ओघ निकालो ओघ निकालो थोड़ी अपनी रिवीजन भी हो जाएगी ना। ये 27 पेज से अपनी मार्गणा शुरू हुई थी जगन्य संबंधी मार्गणा ने ओघ की बात प्ररूपणा वहां हमने देख ज्ञानावरण के एक के साथ अन्य को जगन ने ही लिया नियम से ऐसा ही दर्शनावरण में और अंतराय में लगेगा मिला ना 27 पेज पर मैं पढ़ रही। अब निद्रा निद्रा के जगन्य वाला जीव है वो जगन्य कब होगा पहले ये बताना।
निद्रा
संयम के समय वो अन्य दो का नियम से बंद करता है वो जगन्य भी और अजगन्य भी अन्य का जो होगा वो अनंत गुना होगा है ना। वो निद्रा का और हमने बाकी का तो देख लिया था दर्शनावरण की हमने बात की थी बाकी तो साता का करता है तो असाता का नहीं करता है गोत्र का करता है तो वो तो नहीं करता वो तो सब समझ लेना आयु का। अब मोनी की बात मिथ्यात्व वगैरह के तो हम बाद में देखेंगे शपक प्रकृति हमको देखनी थी ना
वो भी नाम करना
नहीं पहले मोनी की बात करें। देखो नीचे से चौथी लाइन लास्ट लास्ट में चार संजोलन और पांच नौ कषाय का ये किसके साथ ले रहे हैं प्रत्यक्षम के जगह में वो नहीं नीचे से दूसरी लाइन ले लो क्रोध संज्वलन का जगन अनुभव का बंद करने वाला जीव तीन संज्वलन का नियम से बंद करता है जो अनंत गुण बुद्धि ये अभी हमने ऊपर से लोभ से शुरू किया था क्रोध तक आए थे मान का करने वाला माया और लोभ का अनंत गुणा करेगा माया का जगन्य करने वाला लोभ का अनंत गुण वृद्धि रूप करेगा और लोभ का जगन्य करने वाला अन्य किसी का बंधक ही नहीं होगा। बाकी तो उन्होंने बताया कि पंचनी तीरंचों के समान है ये क्षपक प्रकृति तो हमने देख ली अब उसमें देख लो मिथ्यात्व का जगन्य देखेंगे मिथ्यात्व का जगन्य कब होगा तो संयम के सन्मुख वाले तो वहां क्या अनंतानुबंधी का तो जगन्य भी होगा और जगन्य उसके जगन्य के साथ नपुंसक वेद कैसे बनेगा वो तो प्रायः लब्धि में पहले ही यानी मिथ्यात्व के जगन्य के साथ पुरुष वेद ही बांधेगा अस्यरति ही बांधेगा है ना। अब कहते उसके साथ मिथ्यात्व का जगन्य बांधने वाला बारह कषाय पुरुष वेद हास्यरति भयजुगुप्सा का नियम से बंधक है क्योंकि प्रायः लब्धि में बहुत सारे अपसरण हो गए उसके अंतिम समय में यही प्रकृतियां बन रही है उसकी वो अनंत गुण वृद्धि रूप होते ये हो गया। अभी अप्रत्याख्यान का जगन्य करने वाले क्रोध को लिया पहला एक तो चौथे से सातवें में जाने वाला लेना वहां मिथ्यात्व अनंतानुबंधी स्त्री और नपुंसक वेद तो नहीं बन देंगे तो बाकी तीन जो है प्रत्याख्यान के अन्य तीन वो जगन्य भी हो गया जगन्य भी हो गए प्रत्याख्यानावरण संज्वलन और पांच नौकशा है यहाँ अनंत गुण वृद्धि रूप बन देगी क्योंकि आगे जाकर जहां तक बंद है वहां उसका जगन्य होगा। प्रत्याख्यानावरण का जगन्य कौन करेगा पांचवें से सातवें में जाने वाला वहां पर वो अन्य तीन का जगन्य भी कर सकता है संज्वलन का और अन्य का अनंत गुणा अधिक बन संज्वलन को एक एक को हमने देख लिया था अभी आना 29 पेज पर स्त्री वेद के जगन्य अनुभाग का बंद करने वाला ये तो मिथ्या दृष्टि ही करेगा इसको तत्प्राय को विशुद्ध में तो वहां ये मिथ्या तो सुल्ला कषाय भयजुगुप्सा ये तो ध्रुवबंदी प्रकृतियों का तो नियम से बंद करता है जो अनंत गुण वृद्धि रूप होता है हमने ये पहले भी देखा था। देखो स्त्री वेद के जगन्य के साथ हास्यरत या अरति शोक का ऑप्शन है जो अनंत गुण वृद्धि रूप होता है। इसी प्रकार नपुसक वेद की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, उसके साथ भी इन दोनों को ऑप्शन है। पुरुष वेद के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जी वो कहाँ करेगा? हाँ, जहाँ उसकी बंद विच्छित्ति होती वहां पर वो चार संज्वलन के नियम से बंद करता है, जो अनंत गुण वृद्धि होती है। अब हास्य के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव आठवें के अंत में चार संज्वलन और पुरुष वेद का नियम से बंद करता है, जो अनंत गुण वृद्धि होती है। उसी के साथ बंद विच्छित्ति होने वाली रति, भय और जुगुप्सा वो जघन्य भी होगी और अजघन्य भी होगी। वैसे रति के भय की जुगुप्सा की मुख्यता से समझना। अब रति का जो जघन्य कर रहा है वो छठे गुणस्थान वाला, वो वहां क्या क्या बांध रहा है? चार संज्वलन है, पुरुष वेद है, भय जुगुप्सा को तो अनंत गुण वृद्धि है, और रति के साथ शोक को बांधता है वो तो समान यानी जघन्य भी हो सकता है। इस तरह से हमने वहां देख लिया था। ये तो मुनि की हो गई बातें। अब हमको आहार विवेक और तीर्थंकर भी देखना है, वो तो हम नाम कर्मों में देखेंगे। ओ में सारे संस्थान लास्ट में होगा, देखो पेज नंबर 38 पर है। तीर्थंकर प्रकृति का जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव ये कब होगा? पहले ये नक्की करो, मिथ्यात्व के समय वह तो बांध रहा है देवगति, है ना, क्योंकि समय दृष्टि है, वो पंचेंद्रिय जाति वगैरह वगैरह सब बांध रहा है। और वो कैसा बंध रहा है? अनंत गुणादि बांध। अब आहार द्विक का जघन्य बांधने वाला कौन सा जीव होगा? छठे के सन्मुख, सातवें आठवें में बनती है, आठवें में उसका मैक्सिमम होगा क्योंकि प्रशस्त प्रकृति है। सातवें से छठे में जाने वाले के तो वहां बनने वाले जो नाम कर्म की प्रकृतियां हैं यानी आहार विधि की देवगति आदि बनती है उसके साथ, वो सब ले लेना उसका। हाँ, वो भी अनंत गुणा, क्योंकि हमारी मार्गणा कौन सी? मनुष्य की। और देवगति का जगह मध्यम परिणाम वाला मिथ्या दृष्टि बांधेगा और यहाँ उसका अनंत गुण अधिक होगा। और बाकी भी जो उपघात वगैरह जो प्रशस्त बाद में जाके जगन्य होती है वो भी यहाँ अनंत गुण बांधे। अब आगे बढ़ेंगे। देवों में सात कर्मों का भंग नारकियों के समान है, साथ में मोने को भी इंक्लूड कर दिया उन्होंने। तीर्यंच गति के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, नाम कर्मों को छोड़ा क्योंकि वहां तीर्यंच गति का जघन्य तो सातवें नरक का नारकी करता है और नारकियों में तो सारी पंचेंद्रीय जाति बांधने वाले हैं, तो देवों में कुछ विशेषताएं होती है, यहाँ एकेंद्रीय जाति भी बनती है। तो तीर्यंच गति के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, अब ये कैसे मध्यम परिणामों में जघन्य बनेगी? जघन्य अनुभाग है ना, संक्लेश में तो यहाँ भी दो ही गति बनती है, तीर्यंच और मनुष्य गति। तीव्र संक्लेश में तीर्यंच गति का उत्कृष्ट बनेगा और तीव्र विशुद्धि में मनुष्य गति का उत्कृष्ट बनेगा, दोनों का ही जघन्य मध्यम परिणाम है। तो तीर्यंच गति के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव एकेंद्रीय जाति, क्या एकेंद्रीय जाति का उत्कृष्ट कर सकता है? वो उसका भी उत्कृष्ट तीव्र संक्लेश में होगा। तो एकेंद्रीय जाति छह संस्थान, छह सहनन, दो विहाय गति, स्थावर और सिरादि छह युगल का कदाचित बंद करता है, और यदि बंद करता है तो जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। देखो इसको हम फिर से देखेंगे। तिरंज गति का जगन्य कर रहा है। तो जाति कौन सी बांध रहे हैं? हाँ नितिन भाई, कौन सी जाति बांध रही है यहाँ पर? एक इंद्रिय जाति क्या नियम से बंधेगी? यहाँ तो कदाचित लिखा है। देखो भवनत्रिक आदि तो एक इंद्रिय जाति बांधेंगे, ऊपर के देव तो पंच इंद्रिय जाति बांधेंगे, है ना? तो तिरंज या मध्यम परिणाम में तो कदाचित में तो पंच इंद्रिय जाति भी बंधेगी उनके, दोनों ही ऑप्शन है। नीचे के देवों के लिए भी वो ऑप्शन है, मध्यम परिणाम में तो कहीं पर भी हो सकते हैं, ये सारे ऑप्शन में लिए, इसलिए छह संस्थान ऑप्शन में लिया। अकेले एक इंद्रिय जाति बनती है तो हुंडक संस्थान अकेले लिखते, ख्याल में ही बात। तो ये सहनन का भी ऑप्शन दिया है, विहार गति का भी दिया, उसका अर्थ क्या है? पंच इंद्रिय भी बनती है, स्थावर कदाचित बनती है, एक इंद्रिय बंधेगी तो स्थावर बंधेगी, और स्थिर आदि छह युगल का कदाचित बंद करता है, और यदि बंद करता है तो जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। आप कहेंगे स्थावर को लिया, त्रस को क्यों नहीं लिया? एक इंद्रिय को लिया, पंच इंद्रिय क्यों क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहाँ इसी प्रकृति लिया है, एक इंद्रिय और स्थावर वो तो अप्रशस्त प्रकृतियां है। त्रस को बाद में बताएंगे पंच इंद्रिय जाति के साथ। यहाँ तो ऐसी प्रकृतियां हैं जो जघन्य भी बनती है, मध्यम परिणाम वाली, और बाकी जो लेंगे पंचेंद्रिय जाति या त्रस वगैरह वो अनंत गुना अधिक बताएंगे, जो मध्यम परिणाम है उनका जघन्य तो तीव्र संक्लेश में होगा। इसलिए यहाँ स्थावर के ऑप्शन में त्रस को नहीं लिया, वो बाद में रखेंगे उसको। तो ये जो प्रकृति हमने देखी उसका जघन्य भी होगा और अजघन्य भी हो सकता है, और यदि अजगन्य अनुभाग का बंद करता है तो वो छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। अब पंचेन्द्रीय जाति औदारिक अंगोपांग आतप उद्योत और त्रस का कदाचित बंद करता है, जो अनंत गुना अधिक होता है, क्योंकि इसमें से आतप तो एक इंद्रिय जाति के साथ बंधेगी, बाकी तो उद्योत भी एक इंद्रिय के साथ बनती है, पंचेन्द्रीय के साथ भी बन सकती है, परंतु ये कैसा होगा? अनंत गुना। क्यों? परिणाम मध्यम है इसलिए। औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, अगुरु लघु चतुष्क, क्योंकि देव तो अपर्याप्त नाम कर्म बांधेगी नहीं, तो चतुष्क सबको लिया। बादर पर्याप्त प्रत्येक और निर्माण का नियम से बंध करता है। देखो त्रस और स्थावर को तो ऑप्शन में रखा था, पर बाकी बादर पर्याप्त और प्रत्येक तो नियम में लिया, जो अनंत गुना अधिक होता है, क्योंकि मध्यम परिणाम में ये अनंत गुना अधिक होगा। तिर्यंच गत्यानुपूर्वी का नियम से बंद करता है, किंतु वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है। यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। इसी प्रकार तिर्यंच गत्यानुपूर्वी की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। मनुष्य गति का भंग तिर्यंच गति के समान है, इतनी विशेषता है कि एक इंद्रिय जाति आतप उद्योत और स्थावर को छोड़कर यह सन्निकर्ष कहना चाहिए। यानी यहाँ क्या लिखेंगे हम? मनुष्य गति का जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, फिर उसमें छह संस्थान, छह सहनन, दो विहाय गति, सिरादि छह युगल का कदाचित बंद करता है, ऐसा कहेंगे, और वो जघन्य भी हो सकता है अजघन्य भी, ये बात करेंगे। बाकी पंचेन्द्रिय जाति औदारिक शरीर अंगोपांग वो सारे नियम में ले लेंगे, त्रस बादर पर्याप्त प्रत्येक सब। अब देवों में ही ये गति की बात हुई, तिर्यंच गति और मनुष्य गति की। अब देव जो एक इंद्रिय जाति का जघन्य अनुभाग बंद कर रहे हैं, तो एक इंद्रिय जाति के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव तिर्यंच गति, अभी एक इंद्रिय के साथ नियम से बंधने वाली क्या क्या है? तिर्यंच गति है, कुंडक संस्थान, तिर्यंज गत्यानुपूर्वी, स्थावर, दुर्भग और अनादेय का नियम से बंध करता है। एक इंद्रिय के साथ दुर्भग अनादेय तो बंधेगी बंधेगी। ऑप्शन कहाँ है? सिर असिर, शुभ अशुभ, यशस कीर्ति अयशस कीर्ति। स्वर तो बंधेगी नहीं। तो कहते हैं किंतु वह जघन्य अनुभाग का भी बंध करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंध करता है, क्योंकि एक इंद्रिय का जघन्य बंध मध्यम परिणामों में, ये सभी संस्थान तो मध्यम परिणामों में जघन्य, या तो अकेला हुंडक संस्थान ही लेना है। तिर्यंज गति का भी जघन्य मध्यम परिणाम है, ये सभी प्रकृतियों का जघन्य मध्यम परिणाम में होता है, इसलिए वो जघन्य भी होगा अजघन्य भी होगा। यदि अजघन्य अनुभाग का बंध करता है वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, प्रशस्त वर्ण चतुष, अप्रशस्त वर्ण चतुष, अगुरु लघु चतुष, क्योंकि देव अगर एक इंद्रिय बांधते तो पर्याप्त तो कोई बांधेंगे, इसलिए वो चतुष्क ले लिया पूरा। बादर, पर्याप्त और निर्माण का नियम से बंध करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है। ऊपर भी नियम से बंध होता है देखा था, परंतु वो जघन्य भी कर सकता है और ये तो अनंत गुणा अधिक वाला होगा। आतप और उद्योत का कदाचित बंध करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है, क्योंकि वे भी प्रशस्त प्रकृतियां हैं। तो यथा योग्य संकलेश में वो जघन्य बंधेगी, मध्यम परिणामों में वो अनंत गुणा बंधेगी। अब इसी एक इंद्रिय जाति के साथ बंधने वाली स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, यशस कीर्ति और अयशस कीर्ति का कदाचित बंध करता है, उसमें से कोई भी ऑप्शन बंधेगा, किंतु वह जघन्य अनुभाग का भी बंध करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंध करता है। यदि अजघन्य अनुभाग का बंध करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। इसी प्रकार स्थावर प्रकृति की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, क्योंकि तिर्यंज गति, हुंडक संस्थान, ये सब बातें उसी के साथ घटित होगी, क्योंकि उसके साथ बनने वाली प्रकृति सेम है जो एक इंद्रिय के साथ बनती है। अब पंचेंद्रिय जाति के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, मार्गणा याद है ना कि भूल गए, देव, तिर्यंच गति, कुंड संस्थान, असंप्राप्त सम्राट का सहनन, अप्रशस्त वर्ण चतुष, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त विहाय गति और अस्थिर आदि छह का नियम से बंद करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है। पंचेंद्रिय जाति का जघन्य सर्व संकलेश में होगा, तो विशुद्धि में मनुष्य गति बांधेगा तो संकलेश में तिर्यंज गति, इसलिए तिर्यंज गति को नियम मिलेगा। तिर्यंच गति का जघन्य कहाँ होता है? तो मध्यम परिणाम में, तो सर्व संकलेश में वो अनंत गुना होगा। कुंड संस्थान और कोई सहनन भी होते हैं वो तो मध्यम में जघन्य, यहाँ वो अनंत गुना अधिक है। अप्रशस्त वर्ण, प्रशस्त को नहीं लिया, वो प्रशस्त प्रकृति है। उपघात को लिया, अप्रशस्त विहार गति को लिया, ये मध्यम परिणाम में जघन्य, यहाँ वो अनंत गुना अधिक बन देगा। अस्थिर आदि छह का ही नियम से बंद कर रहा है क्योंकि सर्व संकलेश परिणाम है उसके। इसलिए ये अनंत गुणा अधिक बनती है। औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, औदारिक अंगों का प्रशस्त वर्ण चतुष, यहाँ पर लिया ऊपर अप्रशस्त को लिया था। अगुरु लघु त्रिक, किसको छोड़ा? उपघात को, जो अप्रशस्त है ऊपर लिया था। त्रस चतुष्क और निर्माण का नियम से बंद करता है, ऊपर वाली भी नियम से थी, ये भी नियम से है, ये प्रशस्त है वो अप्रशस्त थी, वो अनंत गुणा अधिक बनती थी, और ये जो हमने अभी देखी औदारिक तेजस कारमण वगैरह, वे जघन्य अनुभव का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभव का भी बंद करता है, क्योंकि सर्व संकलेश में ये भी जघन्य बन सकती है। यदि अजगन्य अनुभाग का वन करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। यहाँ पंचेंद्रीय जाति की बात चल रही है। उद्योत का कदाचित बंद करता है, यदि बंद करता है तो जगन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजगन्य अनुभाग का भी बंद करता है, क्योंकि तिरंज गति के साथ उसका बंद हो सकता है और वो भी प्रशस्त प्रकृति है तो उसका भी यहाँ जगन्य बन सकता है। यदि अजगन्य अनुभाग का बंद करता है तो वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। इसी प्रकार औदारिक अंगों का और त्रस प्रकृति की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। एक इंद्रिय जाति का उत्कृष्ट मान देंगे वो, नीचे के देव सर्व संकलेश परिणामों में एक इंद्रिय जाति का उत्कृष्ट बंद करेंगे। वो भवनवासी की बात हम बाद में देखेंगे, अभी तो सामान्य देव में देख रहे हैं। आपको भवनवासी की बात देखना था ना, देखो ये आपके प्रश्न का उत्तर 53 पेज पर है। भवनवासियों में नीचे का पैराग्राफ, पंचेंद्रिय जाति का जगन अनुभाग बंद करने वाला जीव, वही पूछ रहे थे ना आप, दोनों गति बांध रहे। मध्यम परिणाम में जगन और ऊपर के देव में आर्क्यूम के समान सर्व संकलेश में वो पंचेंद्रीय जाति ही बांधता है। ये हमने देख लिया। अभी 51 पेज पर नीचे का पैराग्राफ 110 नंबर का, औदारिक शरीर के जगन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, ये भी सर्व संकलेश वाला लेना है। परंतु इसमें अभी औदारिक शरीर का जगन्य बंद कौन करता है तो सर्व संकलेश वाला करेगा। अब वो एकेंद्रीय जाति बांधेगा कि पंचेंद्रीय, नितिन में आप बता। देव है हाँ, तो पंचेंद्रीय जाति बांधेगा कि एकेंद्रीय जाति बांधेगा, मयंक भाई आप कहेंगे नीचे के देव एकेंद्रीय जाति को बांधेगा, ऊपर के देव तो पंचेंद्रीय है, उनके तो दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अरे यानी सदर महेशान तक करो आप, सर्व संकलेश में एकेंद्रीय जाति बांधेंगे, ऊपर के देव सर्व संकलेश में पंचेंद्रीय जाति बांधेंगे। परंतु कोई भी हो औदारिक शरीर तो दोनों ही बांध रहे सर्व संकलेश में। अभी हम औदारिक शरीर का जगन्य वाला है ना, कौन सा सर्व संकलेश वाला देव है, वो नीचे का भी हो सकता है ऊपर का भी हो सकता है, इसलिए यहाँ दोनों जातियों को ऑप्शन में रखेंगे हम। है मेरी ना बात, ऊपर तो अकेले पंचेंद्रीय जाति का ही था तो वहां तो हम डेफिनेट कह सकते कि ऊपर के देव थे उसका जगन्य बांधने वाले, क्योंकि नीचे के देव तो उसके तो पंचेंद्रीय जाति का जगन्य बांधते है, मध्यम परिणाम में बांधते है। ऊपर जो सनत कुमार से ऊपर के देव सर्व संकलेश में वो पंचेंद्रीय जाति जगन्य बांध देंगे। अब हम औदारिक शरीर पर गठित करें, औदारिक शरीर के जगन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, ये सर्व संकलेश वाला है ना, तिर्यंच गति यानी मनुष्य गति तो नहीं बांध रहे हो, हाँ वो सर्व संकलेश वाला ऊपर का जो आनंद से लेकर जहां वो मनुष्य गति ही बांधते हैं उसकी बात नहीं है। और उनकी इतने तीव्र संकलेश भी नहीं होगी विष्णु शुक्ल निशान, इसलिए वो तीर्यंच गति कुंड संस्थान अप्रशस्त वर्ण चतुष्क तीर्यंच गत्यानुपूर्वी उपघात और अस्थिर आदि पांच का नियम से बंध करता है जो अनंत गुण अधिक होता है। पांच को नियम में लिया, किसको छोड़ा? स्वर को इसलिए छोड़ा, वो नियम से नहीं बनते। एक इंद्रिय का बंद करता होगा तो वो कैसे बंधेगी, इसलिए उसको छोड़ दिया। अन्य पांच तो नियम से बंधेगी और सारे अप्रशस्त प्रकृतियां यहाँ काउंट की है। कैसे बनती जो अनंत गुणा अधिक हो, क्योंकि इनका उत्कृष्ट अनुभाग बंध यहाँ होगा। उदारिक शरीर के जघन्य के साथ इन अप्रशस्त प्रकृतियों का उत्कृष्ट होता है, उसका अर्थ क्या है उसका? वो जघन्य अनंत गुणा अधिक बनता है। हाँ, वो सारे देवों की अपेक्षा बात करेंगे तो एकेंद्रीय जाति असंप्राप्त रूपाटिका सहनन अप्रशस्त विहाय गति योग करना बराबर योग विहाया गति दिख रहा है विहायो गति स्थावर और दुस्वर का कदाचित बंध करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है। देखो एक एक को ले लेंगे। औदारिक शरीर का जघन्य कर रहे हैं अति संकलेश परिणाम कर रहे, तो अति संकलेश में एकेंद्रीय जाति तो उत्कृष्ट बंधेगी, तो उसके मध्यम परिणाम में जहाँ जघन्य होते उसकी अपेक्षा यहाँ अनंत गुणा अधिक हो यदि बनती है। तो एकेंद्रीय जाति बन रही हो तो सहनन नहीं बंधेगा, विहाय गति नहीं बंधेगी, स्थावर तो बंधेगा एकेंद्रीय के साथ, परंतु एकेंद्रीय कदाचित बनती है तो स्थावर भी कदाचित बंधेगी। और दुस्वर का बंध तो पंचेंद्रिय के साथ होगा, यदि बनता है तो कैसा बंधेगा? यहाँ तो अनंत गुणा अधिक बंधेगा। क्योंकि उसका भी मैग्जिम ये अप्रशस्त प्रकृति है, तीव्र संकलेश में ये भी उत्कृष्ट बंधेगी, तो जगन्य की अपेक्षा इसको हम अनंत गुणा कहेंगे। औदारिक अंगों का अब देखो, औदारिक शरीर भी प्रशस्त है और ये अंगोपांग भी प्रशस्त है। आतप उद्योत और त्रस का कदाचित बंद करता है, यदि बंद करता है तो जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है, क्योंकि ये भी प्रशस्त है, सर्व संकलेश में ये भी जघन्य बन सकती है। यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है वो छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। तेजस कारमन शरीर प्रशस्त वर्ण चतुष अगुरु लघु उपघात सॉरी अगुरु लघु परघात उच्छ्वास बादर पर्याप्त प्रत्येक और निर्माण का नियम से बंद करता है। ये नियम से बंधने वाली प्रशस्त प्रकृतियां हैं, किंतु वह जघन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजघन्य अनुभाग का भी बंद करता है, क्योंकि ये सारी प्रशस्त है और ये भी सर्व संकलेश में जघन्य बंधेगी। यदि अजघन्य अनुभाग का बंद करता है वो छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। इसी प्रकार यानी जैसे अभी हमने औदारिक शरीर अंगोपांग पे देखा, अंगोपांग पर अभी घटित किया था ना, इसके साथ लिया हमने शरीर के साथ देखा, इसी प्रकार तेजस शरीर कारमन शरीर प्रशस्त वर्ण चतुष अगुरु लघुत्रिक यानी परघात उच्छ्वास को लिया, उद्योत बादर पर्याप्त प्रत्येक और निर्माण की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए, उसके बारे में भी यही बात घटित होगी, क्योंकि ये सारे द्रोहबंदी और प्रशस्त प्रकृतियां हैं। आतप की मुख्यता से भी सन्निकर्ष इसी प्रकार जानना चाहिए, इतनी विशेषता है, एकेंद्रीय जाति और स्थावर का नियम से बंद करता है जो अनंत गुणा अधिक होता है, क्योंकि उनका जघन्य तो मध्यम परिणाम में होता है और यहाँ तो सर्व संकलेश वाला है। चार संस्थान चार सहनन दो विहाय गति सुभग, दो स्वर और अनादेय का भंग पहले पृथ्वी के समान है। देखो देह या तो एक इंद्रिय का बंद करते हैं या तो पंचेंद्रिय का करते हैं। अब यहाँ तो उन्होंने कुंड संस्थान और असंप्राप्त रूपाटिका में कदाचित में ले लिया था, है ना, औदारिक शरीर वगैरह के साथ। अब ये जो बीच वाले चार संस्थान और सहनन है, सहनन तो एक इंद्रिय के साथ बनता ही नहीं है, और बीच वाले जो चार संस्थान है वो भी पंचेंद्रिय के साथ ही बन रही है, परंतु इसमें दोनों को ऑप्शन है, मनुष्य गति भी बन सकती है क्योंकि ये मध्यम परिणामों में जघन्य होता है और उनका भी जघन्य वो मध्यम परिणाम में होता है। देखो जरा पहली पृथ्वी का निकाल लो तो आपको शांति हो जाएगी। 29 कहीं से शुरू हुआ था ना, नहीं 27 से, कहाँ से शुरू हुआ था, नहीं 27 से तो वो हुआ नारकी के मार्गणा ना, ना नरक गति तो देव सामान्य सी बात चल रही है, नारकियों में देखना था शायद, नारकियों में 38 पेज पहली पृथ्वी में वो खाली तीजन गति का भंग अलग है ना, बाकी ये तो 39 पर शुरू हुआ है क्योंकि नाम कर्म वहां से शुरू हुआ है, नारकियों की मार्गणा शुरू हुई 38 पर, नाम कर्म 39 पेज से शुरू हुआ है और हमें वो संस्थान वगैरह देखना है ना। फॉर्टी पेज पर होगा, आप कहाँ देख रहे, 41 पर, वो तो सातवीं पृथ्वी का भंग है ना, सातवीं पृथ्वी का भंग तो 82 पृष्ठ से शुरू हुआ, ऊपर छोर में तिरंज गति गत्यानुपूरी का भंग मनुष्य गति के समान है, बाकी सब समान है। तो मध्य के चार संस्थान और चार सहनन, वहां तो उन्होंने मनुष्य गति के समान बता दिया, छह संस्थान छह सहनन को। यानी ऊपर के मनुष्य गति के साथ भी बंधेगा और तिरंज गति के साथ भी बंधेगा, वो ये बात वहां ले लेना और कुछ नहीं। अब हम कहां थे, पेज नंबर 52। देखो मैं फिर बताती हूँ, पहले पृथ्वी का समान कहने का कारण क्या है, सातवीं पृथ्वी वाला तो तिरंज गति बांध रहा है, ये मध्यम परिणाम में नित्यादृष्टि मध्यम परिणाम में तो तिरंज गति का ही बंध कर रहा है। अब यहाँ जो लेना है चार संसार चार सहनन दो विहाय गति, इन सभी का जघन्य बंध मध्यम परिणाम में होगा, वहां या तो मनुष्य गति बंधेगी या तिरंज गति बंधेगी, ये कहना है। और इसमें पंचेंद्रिय को ले लेना है ना, आदेय को क्यों छोड़ा, मध्यम परिणाम में आगे देखते देखो, ये चार संस्थान चार सहनन बता दिया। अभी हुंड संस्थान के जघन्य अनुभाग का बंद करने वाला जीव, बांधने वाले तो है देव, और ये उम्र संस्थान का जगन निकल रहा है। कौन से मध्यम परिणाम? छह संस्थान छह सहनन के लिए मध्यम परिणामों में जगन है, क्योंकि इसका सर्व संकलेश में तो उत्कृष्ट बंध होगा, सर्व विशुद्धि में ये बंधेगी नहीं, मध्यम परिणाम में इसका जगन है। तो ये दो गति एकेंद्रीय जाति, यानी उसमें भी ऑप्शन है ना, हुंडक संस्थान एकेंद्रीय जाति के साथ भी बन सकता है, पंचेंद्रीय के साथ भी बन सकता है। तो दो गति का ऑप्शन है, एकेंद्रीय जाति, छह सहनन, दो अनुपूर्वी, दो विहाय गति, स्थावर और सिरादि छह युगल का कदाचित बंद करता है। यदि बंद करता है तो जगन्य अनुभाग का भी बंद करता है और अजगन्य अनुभाग का भी बंद करता है। यदि अजगन्य अनुभाग का बंद करता है वह छह स्थान पतित वृद्धि रूप होता है। ऊपर एकेंद्रीय जाति को कदाचित लिखा, उसका अर्थ कदाचित पंचेंद्रीय जाति भी बंधेगी, परंतु पंचेंद्रीय जाति बंधेगी तो मध्यम परिणाम में कैसी बंधेगी? अनंत गुणादि बंधेगी। तो जो प्रशस्त प्रकृतियां हैं, जो सर्व संकलेश में जगन्य बनती, उसकी लिस्ट अभी बताएंगे। पंचेंद्रिय जाति औदारिक अंगोपांग आत उद्योग त्रस्का कदाचित बंद करता है जो अनंत गुणाधिक होता है। कदाचित में रखा, औदारिक शरीर को नियम में रखेंगे तो औदारिक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, प्रशस्त वर्ण चतुष्क, अप्रशस्त वर्ण चतुष्क, अगुरु लघु चतुष्क, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक और निर्वाण का नियम से बंद करता है जो अनंत गुणाधिक होता है। इसमें दो अप्रशस्त भी ले लिए, वर्ण चतुष्क भी लिया और उपघात भी लिया, वो विशुद्धि में जगन्य होगा, यहाँ वो अनंत गुणा बनता है। इसी प्रकार कुंड संस्थान के समान दुर्भग और अनादेय की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। ऊपर क्या है, अनादेय क्यों लिया है? या फिर अनादेय की मुख्यता से यहाँ पर ले लिया, दो स्वर ऊपर भी लिए थे। नहीं, ऊपर जो हमने पहले पैराग्राफ में देखा था ना, चार संसार चार सहनन दो विहाय गति सुबह का दोष और अनादेय का भंग पहली पृथ्वी के समान है। अब यहाँ जो बता रहे हैं, इसी प्रकार दुर्भग अनादेय की मुख्यता से सन्निकर्ष जानना चाहिए। अप्रशस्त वर्ण चतुष्क और उपघात की मुख्यता से सन्निकर्ष नारकियों के समान है, क्योंकि उसका जगन्य तो विशुद्धि में होगा, यानी समय दृष्टि के होगा। तो वहां तो मनुष्य गति बांध रहा है, पंचेंद्रीय जाति बांध रहा है, वो तो नियम से बंध रही है उसकी। हाँ, तो उसका तो जगह, उसका तो मैक्सिमम बंध रहा है ना, यानी वो अनंत गुना बंधेगी। ख्याल में आती बात, सम्य दृष्टि सर्व विशुद्ध है, वो उपघात को जगन्य बांध रहा
है।
हाँ, बंधेगी या नहीं बंधेगी, परंतु इसके जगन्य के साथ ये जो मनुष्य गति बंधेगी, पंचेंद्रिय जाति बंधेगी, वो अनंत गुण अधिक बंधेगा। देखो निकालो नारकियों के समय, अभी हमने कहा देखा था 39 या 38 कुछ। इसकी बात हो रही थी अभी, उपघात उपघात और अप्रशस्त से वर्ण चतुष्क।
हम्म,
39 में नहीं दिख रहा है। तीरिंज गति के साथ हो रहा है। यानी वो सर्व विशुद्ध वाला है ना? ये हमने 46 पेज पर भी इसका रेफरेंस देखा था। वो मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, ये सब नियम से बांध रहा है, जो अनंत गुना अधिक बांध रहा है। यही लेना, उसमें और कुछ नहीं। ये समय दृष्टि है ना, मनुष्य गति का बंद कर रहा है। उसका जगन में तो मध्यम परिणाम में होता है, यहाँ तो वो सर्व विशुद्ध वाला लेना है। हाँ, मुझे ऐसे ही लगता है। वहाँ देख लेते हम फिर दोबारा, वहाँ पर अभी जो हमने देखा था ना, अभी हमने पेज 40 देखा। नहीं देखो, अभी यहाँ कैसे लिखा उन्होंने, अपसत्त ऊपर निरय भंगो, यानी नारकियों के समान भंग है। और ऊपर लिखा चतुसंतान चतुसंगन दो विहा सुभग दोसर अनादेय पड़म पुड़वी भंगो। यदि वहाँ अनादेय लिया तो यहाँ फिर अनादेय क्यों लिया? हाँ वही तो,
वो पेटी पुत्री के सामने बताए पर वहाँ पे तो या पेटी का देखा ना अक्सर का माना, उसके ऊपर छह युगल का बंग बहुत के सामने बताते हैं।
क्या क्या क्या
पेज नंबर 40 में जब हमने ये अक्सर का माना का देखा ना,
हाँ
उसके ऊपर की लाइन में छह युगल का बंग है और के सामने तो छह युगल में आधा से भी आ गया ना।
तो अनादेय को अलग से क्यों लिया उन्होंने? तो सुभग का भी जघन्य लिया उन्होंने, देखो ओग में निकालो, वहां ओग के समान बताया ना उन्होंने। हाँ परंतु ओग कहां से 27 से शुरू हुआ था ना, उन्तीस से वो नाम कर्म शुरू हुआ था। तो पहले में गति फिर जाति की बात होगी, 31 पर जाति आई, फिर 33 से समय चतुर्थ संस्थान शुरू हुआ था, समय चतुर्थ के समान उन्होंने सुभग सुश्वर आदेय को बताया था। बीच के चार संस्थानों के लिए मनुष्य गति या तीरंज गति ऐसा होगा वहां पर,
दोनों गति में।
हाँ पेज 33। हाँ आ गई, हाँ
यहाँ पर भी सुबह है,
वहाँ सुबह है। और अभी हमको दुर्भग की मुख्यता से 34 पेज पर पहले पैराग्राफ के लास्ट में इसी प्रकार, वो इसी प्रकार किसके लिए लगाया, कुंड संस्थान का जघन्य अनुभाग बंद करने वाले जीव के समान लिया। दुर्भोगा अनादि तो उन्होंने उसके समान लिया, वो तो समुद्र संस्थान के समान दुर्भोगा अनादि तो हो जाता है। और वहां स्वर कहां लिया, ओग में स्वर कहां लिया, दुर्भोगा अनादि हुंडक संस्थान के साथ लिया। और सुभग सुस्वर आदेय तो समचतुरस्र के साथ लिया, बराबर। दुस्वर का भंग कहां लिया, इसमें देव में यही बात बताना चाहते हैं। जो ओग में क्या डिफरेंस था या सामान्य नारकियों में क्या डिफरेंस था, तो सातवें नरक में तिरंज गति का जघन्य तो वो सर्व विशुद्ध मिथ्या दृष्टि को होता है, और यहाँ पर मध्यम परिणाम में तिरंज गति का जघन्य होता है। तो जहाँ जहाँ ये बनती है वहाँ तिरंज गति का भी ऑप्शन लेना है, बस इतनी विशेषता है यहाँ पर।
दोनों गति
लेना, मगर ये ऊपर के अनादेय का कुछ लफड़ा नहीं समझा। 34 पर है दुर्भग और अनादेय की मुख्यता से बताए, वहां पर वो हुंडक संस्थान के समान बताए उन्होंने।
हाँ, हुंडक संस्थान के नीचे जो वहाँ लिखा है ना हुंडक संस्थान,
हाँ
उसके नीचे थर्ड में इसी के नीचे
का कदाचित बंद करते
हैं।
आएगा ना, परंतु वैसा उसमें दुर्भग और अनादेय की मुख्यता से यही घटित होगा। यहाँ मुख्यता क्या है, तो एकमात्र पंचेंद्रीय जाति बनती है ना इनके। यहाँ आदेय होना चाहिए ऐसी बात है लगता है ना, क्योंकि इसके साथ तो पंचेंद्रीय जाति ही बंधेगी ना, सुभग के
साथ।
हर एक अलग अलग लेना है, बराबर है। आदे वही तो मुझे लगता है, अनादे के बदले वहाँ आदे होना चाहिए था ऐसा लगता है। अनादे लिखा तो आदे लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क डालना पड़ेगा। वो पेंसिल से क्वेरी आदे लिखो।
वहाँ पे दोनों का प्रतिबंध
है, हाँ क्योंकि स्थिरादि जो छहो है उसका मध्यम परिणाम में जगह है, दोनों गति का बंद हो सकता है। इतना ही पंचेंद्रीय जाति ही बंधेगी, क्योंकि एकेंद्रीय जाति के साथ तो अनादे बन सकती है, आदे तो बंधेगी नहीं, स्वर दोनों ही नहीं बंधेगी, इसलिए इसको ले लिया। मैंने दुर्भग और अनादि तो बंधेगी ना, पहली पृथ्वी के समान क्यों लिया, क्योंकि पंचेंद्रीय जाति का ही बंध करता है, वहाँ आदेय रखेंगे तो बात घटित होती है सब पूरी। पंचेंद्रीय जाति के साथ ही सब घटित होगा। एक इंद्रिय के साथ ना संस्थान ये बंधेगी, ना बीच वाले सहनन बंधेगी, ना विहाय गति बंधेगी, ना सुहग बंधेगा ना आधे बंधेगा ना दो स्वर बंधेगी, तीसरे स्वर में दोनों स्वर लिए, एक एकमात्र पंचेंद्रिय जाति लेना है, गति में दोनों ऑप्शन है। या अनादे को आधे कर देते हैं ना तो बराबर घटित होता है, क्योंकि अनादे के बाद नीचे मुंड संस्थान के समान ले लिए दुर्भग और अनादे, क्योंकि अनादे के साथ तो एक इंद्रिय जाति भी बन सकती है पंचेंद्रिय जाति भी बन सकती है, उसमें दो गति का ऑप्शन दो जाति का ऑप्शन वो सब ले लेना। अब रुकेंगे हम ये जावानी के ज्ञान के सूझे लो कालो सोवाणी मस्तकनं सदा देखहु।